मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो।
शांति। क्लास का विषय याद है? याद है किसी को? किसी को भी याद नहीं है। स्वमान द्वारा सर्व खजानों की अनुभूति। तो आप दो दिन से जो भी क्लासेस सुन रहे हैं, तो बाबा ने जो हमें ज्ञान का खजाना दिया है भिन्न भिन्न स्मृतियों के रूप में, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे हैं? तो जब हम स्वमान कहते हैं तो शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वयं को मान देना। तो बाबा हमें जिस नजर से देखते हैं, क्योंकि भगवान हमें बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे तीनों कालों को जानते हैं। हम तो अपने एक ही काल को जानते थे और वो भी भूले हुए थे। बाबा ने आकर के हमें स्मृति दिलाई कि हम क्या थे, क्या बन गए और फिर हमें क्या बनना है। तो वो प्रारब्ध इतनी ऊंची है कि जब हम उसकी स्मृति में रहते हैं तो स्वतः ही स्वमान में स्थित हो जाते हैं। हम भूले हुए थे। एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार राजा का बच्चा कोई भेड़िया उठा करके ले गया, गुम हो गया, वो ढूंढा नहीं मिला। और जब 5 साल का हुआ, क्योंकि वो भेड़ियों के बीच में ही पला, तो बिल्कुल भेड़ियों जैसा ही उसका चाल चलन, भेड़ियों जैसी ही आवाज, वो ये भूल ही गया कि मैं इंसान हूं। ऐसे ही होता है ना, बच्चा तो जैसा देखता है वैसा ही सीखता है। अब छोटेपन में उठा के ले गया भेड़िया, तो वैसा ही वो बन गया, बिल्कुल भेड़िया जैसा ही, चार पैर, मतलब हाथ पैर को भी पैर जैसे यूज करने लगा। फिर वही राजा जब शिकार खेलने के लिए गया जंगल में, तो ये भेड़ियों के झुंड से टकराया। तो भेड़िये तो भाग जाते हैं, जल्दी भाग सकते हैं, लेकिन ये तो भेड़िया नहीं था, इंसान का बच्चा था, तो इतना जल्दी वो नहीं भाग पाया, वो ग्रुप से छूट गया, पीछे रह गया। तो पकड़ लिया सैनिकों ने, और जब उठाया तो देखा चेहरा तो इंसान का है, वैसे पहचान में नहीं आया, लेकिन कोई इंसान का बच्चा है, ऐसे करके उसको महल में ले आए। फिर उसकी कुछ निशानियां थी, राजकुमार था तो कुछ निशानियां थी। तो जब उसको पूरा नहलाया धुलाया साफ किया, तो वो निशानी से पता चला कि ये तो वही राजकुमार है जो बचपन में गुम हो गया था। अब ये तो राजकुमार नहीं है, अब क्या बन चुका है? वो भेड़िया बन चुका है। अब इसको कैसे इंसान बनाया जाए, पहला प्रश्न तो वो है। तो राजा ने बहुत सोचा और उसने सोचा कि मैं किसी को इसके लिए नियुक्त कर देता हूँ, कोई शिक्षक रखता हूँ इसके लिए, जो इसको ये समझाए कि इंसान कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खड़ा होता है। अब ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं है, है इंसान, लेकिन भूल गया, खुद का ही स्वरूप भूल गया। तो उसको किसी टीचर को सिखाने में साल लग जाते हैं, जब तक वो सीधा खड़ा होना, क्योंकि अब उसका शरीर ही इसी तरह से बन चुका है। कई बार शरीर स्टिफ हो जाता है ना, कभी एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो कोई मांसपेशियां जो है वो स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है। फिर उतना ही समय जितना समय प्लास्टर रहता है ना उतना ही समय फिजियोथेरेपी करते हैं तब जाकर के वो ठीक से अंग काम करने लगता है। तो इसके लिए भी इतना साल शरीर इस रूप में रहा तो उसको वापस सही पोजीशन में लाने में कितना समय लगेगा, उतना ही समय लग जाएगा, ऐसा होगा ना। फिर चलो वो सीधा खड़ा होने लगा, दिमाग तो इंसान का था ना तो समझ तो गया और फिर सीखने भी लग गया, भाषा भी सीखी, बोलने भी लगा, लेकिन अब वो साधारण इंसान तो नहीं है, राजा का बेटा है, राजकुमार है, तो साधारण चलन से तो नहीं चलेगा। तो राजकुमार क्या होता है, रॉयल चलन क्या होती, वो सिखाओ उसको। वो सिखाने में भी सालों लग गए, तो ऐसा नहीं कि वो राजकुमार नहीं था, राजकुमार तो था लेकिन पूरी तरह से वो विस्मृत हो गया कि मैं राजकुमार हूँ। तो हम आत्माओं का भी इस पूरे चक्र में आते आते यही हाल हो जाता है। ऐसे नहीं हम आत्मा नहीं है और ऐसे नहीं कि हम देवात्मा नहीं थे, हम देवता नहीं थे या हम पूज्य नहीं थे, लेकिन भूल गए ना, भूल गए तो क्या हाल हो गया, पूरी तरह से माया के जिस झुंड में चले गए, यानी रावण के झुंड में चले गए तो पूरा स्वरूप ही वैसा बन गया। अब बाबा हमें याद दिलाते हैं तो बहुत जल्दी हम वापस अपने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आ पाते, समय लग रहा है ना, लगता है समय नहीं लगता है, पुराने संस्कार पूरी तरह से खत्म हो जाएं और मेरे वो ओरिजिनल संस्कार जो बाबा ने मुझे स्मृति में दिलाए हैं वो मेरा स्वरूप बन जाए, वो मेरी समर्थी बन जाए, उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। और ये भक्ति क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अपने भीतर जा रहे हैं और उससे हम पक्का कर रहे हैं। सोमान माना बाबा ने जो हमें स्मृतियां दिलाई हैं, हम कौन हैं, मैं केवल आत्मा नहीं हूं लेकिन कौन सी आत्मा हूं, ये भी बाबा ने स्मृति दिलाई है। तो आप तो दो दिन से सुन रहे हैं, मुझे दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपसे सुनना चाहती हूँ हाँ कि कौन सी आत्मा है और लंबी माला है। हाँ, एक एक भी अगर बोलेगा तो भी पूरी नहीं होगी, मतलब एक एक रिपीट नहीं करे, एक एक अलग अलग बोले तो भी पूरी नहीं होगी। हाँ, तो सबको अलग अलग पॉइंट बोलना है, एक जैसा पॉइंट नहीं बोलना है। हाँ, त्यागी तपस्वी आत्मा है, अच्छा ये तो संगम युग का हो गया, और एक एक बोलो, एक एक बोलो, देवात्मा बोल दिया, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। हाँ, एक एक बोलो, एक एक ना, इकट्ठा बोलते हैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, शिव शक्ति आत्मा, केवल भाग्यवान नहीं उससे भी आगे पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, विजयी रतन हूँ, अष्टभुजाधारी शक्ति स्वरूप हूँ। मतलब अच्छी अच्छी बातें याद आ रही है, आधार मूरत हूँ और उसके साथ जुड़ा हुआ उद्धार मूरत हूँ, नूरे रतन हूँ, बिल्कुल बाबा के नयनों का नूर हूँ और उससे जुड़ा हुआ दिल तख्त नशीन हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ, आदि रतन हूँ। हाँ, पीछे से बोलो, आगे वालों ने बहुत सुना दिए। हाँ, विघ्न विनाशक बोल दिया, जोर से बोलना पड़ेगा पीछे वाले, पूर्वज हूँ, बिल्कुल सभी पूर्वज बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, त्रिकालदर्शी हूँ। हाँ, ये बोला, त्रिनेत्री हूँ, बराबर त्रिनेत्री हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, त्रिकालदर्शी हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, शिव की सजनिया हैं, आज की मुरली में सजनिया बताया बाबा ने सबको, फिर तो भाई भी सजनिया है हा? जो भाई बैठे हैं उन्होंने स्वीकार किया और जो बाबा ने बोला हा? बेहद के बेहद रूप में, शरीर के रूप में नहीं हा? कौन से रूप में सजनिया है? आत्मा के रूप में सीताएं हैं, सजनिया हैं, जो भी कहें हाँ। और शिव शक्ति हैं, सुदर्शन सुदर्शन चक्रधारी हैं हाँ। नष्ट मोह तो धारणा है, सोमान की बात कर रहे हो, लाइट और माइट हाउस है। आज का सोमान क्या था? मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। किसने अनुभव किया सारा दिन हाँ? किसने ये अभ्यास किया? देखो आधे आधे नो भी नहीं किया तो फिर क्या हुआ, भूल गए हाँ? 50% भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का सबसे अच्छा स्थान तो मधुबन है, यहाँ किया तो वहां भी अनुभव कर सकेंगे, ठीक है। तो बाबा ने हमें कितने सुमान दिए हैं, और कहते स्मृति से समर्थि आती, जब हम स्मृति में रहेंगे तभी वो शक्ति आएगी। जैसे हनुमान के लिए कहते हैं उसमें उड़ने की शक्ति थी, लेकिन समुद्र पार करने के समय जब उसने देखा इतना विशाल समुद्र है हाँ, मैं तो इतना विशाल समुद्र नहीं पार कर सकता, मैं लंका में कैसे पहुंचूंगा, मैं सीता को कैसे ढूंढूंगा हाँ, तो फिर जामवंत थे उनके साथ और उन्होंने उसको याद दिलाया कि तुम्हारी शक्तियां क्या हैं। और जब उसे वो स्मृति आई कि अच्छा मैं पवन सुत हूँ हाँ, मैं तो हवा में उड़ सकता हूँ, तो फिर उसने पूरे समुद्र को लंघ लिया हाँ। बाबा हमें क्या कहते हैं, आप बच्चे उड़ती कला वाले हो। ये किसका यादगार है? कोई हनुमान जैसा कोई चरित्र तो हुआ नहीं, किसका यादगार है? हम बच्चों का हाँ। हम उड़ती कला वाले हैं, आत्मा उड़कर इस संसार से पार हाँ, संसार सागर से पार जा सकती है। वो स्मृति आते ही हाँ, हम एक सेकंड में पहुंच जाते हैं परमधाम। पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते? अगर बीच में कोई भारीपन नहीं है, यानी देह अभिमान अगर रुकावट नहीं बनता है, देही अभिमानी स्थिति में एक सेकंड में उड़ के परमधाम पहुंच सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंच सकते। जैसे कि अगर विस्मृति है, मेरे स्वरूप की स्मृति नहीं है मुझे, तो फिर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही कोई दुनिया में एग्जाम्पल देते हैं, एक बार अमेरिका के एक सेल्स, अभी एट प्रेजेंट वो सबसे बड़े सेल्समैन ट्रेनर हैं, उनके डायरेक्टर हैं। जब उन्होंने ये काम शुरू किया तो कई बार लोग काम शुरू करते हैं तो उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं होता है, तो उसने सेल्स करना शुरू किया लेकिन वो कहीं भी सफल नहीं होता था। तो जब नहीं सफलता मिल रही थी तो निराश होने लगा, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो अपने मैनेजर के पास गया कि उसको मैं बताऊं कि मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। तो ऐसा करके वो मैनेजर के पास गया और उसको कहा, तो मैनेजर ने कहा कि मेरे को तो तुम बहुत योग्य लगते हो और तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, ऐसा उसने उसको कहा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो कुछ भी काम करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मैनेजर को मुझ पर इतना विश्वास है, तो क्या सचमुच मेरे अंदर योग्यता है? जो अब तक उसको अपने अंदर संशय था कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब उसके मैनेजर ने उसको ये बात कही तो वो उसके अंदर चली गई ना, जैसे बार बार उसके मन में गूंजने लगी ये बात कि उसने मुझे कहा है तुम योग्य हो, तो इसका मतलब मैं योग्य हूँ। और वो जो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया, फिर उसके बाद बदला कुछ भी नहीं, परिस्थितियां तो वही थी, लेकिन अब वो सफल होने लगा और इस मुकाम पर पहुंच गया कि अमेरिका जैसे देश का वो सबसे बड़ा हाँ, केवल वो काम करने वाला नहीं लेकिन ट्रेनर बन गया। तो स्मृति ये काम करती है हमारे लिए। बाबा ने जो हमें स्मृतियां दिलाई हैं, अगर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, एक होता है सुनकर खुश होते हैं, सुनकर खुश होते हैं बाबा ने तो बहुत अच्छा कहा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, हम ही देवात्मा थे, या जो भी इतने सारे हमने सारे स्वमान याद किए अभी, लेकिन क्या सचमुच मैंने उसे स्वीकार किया है? स्वीकार किया माना मैं वो हूँ, हाँ, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, किया है या थोड़ा थोड़ा किया है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान तो हूं, लेकिन हाँ, जब परिस्थिति आती है तब क्या होता है, मेरी शक्तियां इमर्ज होती नहीं है। हाँ, चाहिए सहन शक्ति, लेकिन उसके बदले कौन सी शक्ति आ जाती है, चाहिए सामना करने की शक्ति, लेकिन उसके बदले कौन सी आ जाती है। तो फिर अगर हम शक्तियों को समय पर यूज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब मेरी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति अभी नहीं है ना। तो उस स्मृति को मैंने स्वरूप में लाया। जैसे कहते हैं दुनिया में भी मनन चिंतन के बारे में बहुत सुना आपने, दुनिया में भी कहते हैं घोटते हैं तभी नशा चढ़ता है, बिना घोटे तो नशा भी नहीं चढ़ता है। दुनिया में भी जो शराब बनती है वो इतनी सहज नहीं बनती है, कैसे बनाई जाती है, या भांग भी पीते हैं लोग तो कितना घोटते हैं उसको। तो यहां भी बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, नारायणी नशा भी कब चढ़ेगा, कहां घोटेंगे उसको, मन में घोटना पड़ेगा। बार बार अपना वो देवताई स्वरूप लाना पड़ेगा सामने कि मैं ही वो देवात्मा हूं। तो देवात्मा हूं माना देवात्मा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्व प्राप्ति संपन्न, माया जीत, प्रकृति जीत, डबल ताजधारी, ऐसे ही कहेंगे ये मेरा स्वरूप है। हाँ, जैसे भाई जी भी कह रहे थे ना, आत्म भाई जी, 5 स्वरूपों का अभ्यास मैं करता हूं तो मैंने अपने अंदर कितना बड़ा परिवर्तन महसूस किया। तो हर रोज मेरा ये देवताई स्वरूप, जो मेरा भविष्य स्वरूप है, वो मेरे सामने मुझे दिखाई दे। इसलिए बाबा कई बार कहता है कि अपने घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो। चित्र रखेंगे तो उस जैसा चरित्र बनाने की प्रेरणा मिलेगी। मानो कोई महात्मा गांधी जैसा बनना चाहता है तो क्या करेगा, अपने घर में महात्मा गांधी का चित्र रखेगा तो नेचुरली जब भी वो महात्मा गांधी को देखेंगे तो क्या लगेगा, जिन सिद्धांतों पर महात्मा गांधी चले उन सिद्धांतों पर ही मुझे चलना है, मुझे पसंद है, तभी तो मैंने वो चित्र लगाया ना। तो ऐसे ही श्री कृष्ण का, जो बाबा हमें बताते हैं कि हम श्री कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं, श्री नारायण बनने वाले हैं, ये चित्र हमारे सामने जरूर होना चाहिए, देखते ही स्मृति इमर्ज हो जाए। कई बार बाबा कहते हैं गोले का चित्र भी लगाओ, जो सुदर्शन चक्रधारी वाली बात है, तो गोला देखते ही मुझे अपना पूरा वो सुदर्शन चक्र, 5 स्वरूप सोचने भी नहीं पड़ेंगे, अपने आप हम उन स्वरूपों में स्मृति में चले जाएंगे। तो जब हम स्वमान में रहते हैं तो बाबा कहता है स्वमान मान दिलाता है, स्वमान वाले के आगे मान प्रकृति दासी के समान आता है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक जन्म के लिए मान नहीं मिलता है, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए यानी पूरे कल्प के लिए हम आत्माएं विशेष सम्मान के अधिकारी बनते हैं। सबसे पहले तो संगम युग पर कौन सम्मान देता है, तो सबसे पहले तो स्वयं भगवान अपने बच्चों को कितना मान देते हैं। रोज मुरली में हमें बाबा से याद प्यार मिलता है ना, याद प्यार नमस्ते करते हैं रोज, और शिव बाबा रोज खुद हमें पढ़ाने के लिए आते हैं परम धाम से। रोज, कोई दिन भी ऐसा नहीं कि बाबा बहाना करता है। हाँ, हम तो करते हैं, आज ये है, आज वो है, आज सिर दर्द हो गया, जो भी कोई कितने कारण बनते हैं कि हम मुरली मिस कर देते हैं, लेकिन बाबा कोई भी दिन मुरली सुनाना मिस नहीं करते हैं। तो कहते हैं दुनिया वाले भगवान को याद करते हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को याद करते हैं। दुनिया वाले माला सिमरन करते हैं, लेकिन बाबा किसकी माला सिमरन करता है, अपने बच्चों की माला सिमरन करता है। तो हम बाबा से भी डबल पूज्य बनते हैं। बाबा कहता है मैं सिंगल पूज्य बनता हूं, यानी बच्चों को जो सम्मान दिया, यानी अपने से भी आगे रखा संगम युग पर। डबल पूछे बने यानी शिव बाबा की सिर्फ एक रूप में निराकार रूप में पूजा होती है, लेकिन बच्चों की साकार रूप में भी और निराकार रूप में भी, देवता रूप में भी पूजा होती है। जम्मू में तो विशेष यादगार है, शालिग्राम का मंदिर है ना वहाँ पर, हाँ रघुनाथ मंदिर, मुझे को तो याद नहीं है, बहुत साल पहले मैंने देखा था लेकिन इतना पता है कि वहाँ पर बहुत सारे शालिग्राम बने हुए हैं। कितने हैं वहाँ? 9 लाख, 9 लाख शालिग्राम है। 33 करोड़, 33 करोड़ कैसे बनाए होंगे? 33 करोड़ तो बहुत होता है। हाँ अच्छा, छोटे छोटे हैं तो उसको फिर कैसे पाइप से वो कर देते हैं? अच्छा, धुलाई कर देते हैं और ऐसे ही छिड़क देते होंगे सारा। हाँ अच्छा, तो कहने का मतलब क्या कि बाबा अपने से भी आगे हमें डबल वर्षे के भी अधिकारी बनाते। देखो खुद बाबा सतयुग में नहीं आता है, लेकिन बच्चों को राज्य अधिकारी बनाते हैं और राज्य सम्मान के अधिकारी बनाते हैं। इतनी बड़ी, इतनी ऊंची प्रारब्ध हमें मिलती है कि जो देवता हैं उनके आज जो कलियुगी राजा हैं वो भी उन देवताओं की पूजा करते हैं। तो डबल पूज्य बने, डबल वर्षे के अधिकारी बने, माना मुक्ति में भी जाते हैं और जीवन मुक्ति में भी आते हैं। और फिर सतयुग में जब आदि में आते हैं तभी भी राज्य सम्मान के अधिकारी होते हैं, जो रॉयल फैमिली होती है उनको सब सम्मान करते हैं। फिर जब द्वापर युग में मध्यकाल में पूज्य बनते हैं तो उस समय भक्तों के द्वारा कितना सम्मान से, कितना विधि पूर्वक पूजा होती है। जितना देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा होती है उतनी किसी धर्मात्मा की, किसी भी महान आत्मा की पूजा नहीं होती है। देवताओं के देखो हर कर्म का भोग लगता है, उनके हर कर्म का श्रृंगार अलग होता है। उठेंगे तो अलग, उनको भोग लगाया जाएगा तो अलग, जब आरती होगी तो अलग। और किसी देखते हैं कहीं चर्च में देखेंगे ऐसा कभी करते हैं? हाँ, ईसा मसीह का एक चित्र होता है जो वो नहीं सूली वाला उनका चित्र है, वो एक चित्र होता है और एक दिन उनका प्रेयर का फिक्स होता है कि संडे को जाकर के वहाँ कैंडल लाइट जला के प्रेयर कर लेंगे। या महात्मा बुद्ध के भी जो टेंपल्स होते हैं हमने देखे हैं, कई बार कई स्थानों पर जाते हैं तो सारा दिन कुछ नहीं होता है वहां पर, उनका एक टाइम होता है उस समय जाकर के एक दीपक जल जाएगा बस, और कोई नहीं होता है वहां पर। तो कितनी चहल पहल, हाँ देवी देवताओं के जो मंदिर में है सारे दिन देखो, हाँ कोई ना कोई पूजा पाठ भक्ति विधि चलती ही रहती है। तो बाबा कहता है कि याद रखो भगवान हमें क्या बनाते हैं। जितना जितना याद रखेंगे, जितना जितना स्मृति में रखेंगे उतना नशा और खुशी भी चढ़ेगी। समर्थी तो आएगी आएगी, लेकिन खुशी होगी नहीं होगी? हाँ, मैं कौन हूँ ये याद आने से खुशी होगी या नहीं होगी? हाँ, मानो कोई कोई साहूकार का बच्चा होता है, बिछुड़ जाता है, मानो अनाथ हो गया, बिछुड़ गया तो अनाथ ही हो गया, माँ बाप से अलग हो गया, और फिर बाद में फिर से माँ बाप मिल जाते हैं लेकिन पता चलता है कि माँ बाप बहुत साहूकार हैं, हाँ जैसे कि राजा ही घराने के हैं। जब खो गया तब तो पता नहीं था, अनाथ की तरह जीवन बिताया, लेकिन मिल गए तो वैसे। तो यहाँ भी भगवान हमें मिला, माना सारे खजानों की चाबी हमें मिल गई, हाँ जैसे कुछ भी नहीं था और सब कुछ मिल गया, ऐसे ही कहेंगे ना। कौन कौन से खजाने मिले? ज्ञान का खजाना, सबसे बड़ा खजाना जो है वो संगम युग का ज्ञान का खजाना है। फिर शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना। संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल है। बाबा कहता है एक कदम आप उठाते हैं पद्मों की कमाई कर लेते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक कदम साधारण रीति से नहीं, अगर शिव बाबा की श्रीमद प्रमाण, शिव बाबा की याद में मैंने कदम उठाया, माना कर्म किया, कोई भी कर्म, साधारण कर्म हम घर में करते हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं ना, तो देखने में तो साधारण कर्म है ना, लेकिन उसमें भी पदम कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते, क्या कहेंगे, कमा सकते हैं ना, लेकिन डबल किया तो। यानी मनसा अगर बाबा की याद में है कम कार्डे दिल यार्डे जो बाबा कहता है, हाथ तो भले काम कर रहे हैं लेकिन मन अगर बाबा की याद में लगा हुआ है तो वो एक एक कदम पद्मों की कमाई क्षमा करने वाला। और इसीलिए बाबा कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, बाबा के जो बच्चे हैं वो हाईएस्ट होलीएस्ट एंड रिचेस्ट। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन इस संसार में नहीं है जो एक कदम में पद्मों की कमाई कर सके। कर सकता है कितने भी अरबपति क्यों ना हो, लेकिन एक कदम उठाए और पद्म जमा हो जाए, और एक जन्म के लिए नहीं, वो तो इसी जन्म की कमाई है, विनाशी कमाई है, यहीं रह जाने वाली है। ये तो अविनाशी कमाई है जो जन्म जन्मांतर आत्मा के साथ जाने वाली है। तो इतना इतना नशा अगर हमें है कि हम वो कमाई करने वाले हैं तो खुशी होगी या नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। लेकिन बाबा कहता है नशा चढ़ाने का ये अर्थ नहीं कि अभिमान में आ जाए। कई बार सोचते हैं अरे हम तो बहुत ऊंचे हैं, हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, हम तो बहुत योगी हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, तो फिर अभिमान आ सकता ही नहीं आ सकता, आ सकता ही नहीं आ सकता। बाबा कहता है जितना स्वमान उतना निर्माण। कभी भी स्वमान वाला देह अभिमान में नहीं आएगा। स्वमान है तो अभिमान नहीं और अभिमान है तो स्वमान नहीं। जब देह अभिमान समाप्त होता है तभी स्वमान शुरू होता है। क्योंकि स्वमान किससे शुरू हुआ? आत्मा की स्मृति से शुरू हुआ। आत्मा के ही ये सारी स्मृतियां हैं जो बाबा ने हमें याद दिलाई है ना। तो हमें ये चेक करना है कि हमारे अंदर कहीं अभिमान का अंशवंश तो नहीं है। बाबा कहता है अभिमान की निशानी है, अभिमान की निशानी है, उसको बहुत जल्दी अपमान फील होगा। तो अगर मुझे कोई भी बात में फीलिंग आ जाती है, कितनी परिस्थितियां आती हैं, किसी ने मुझे कह दिया, सबसे कॉमन बात क्या है, किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया, या कोई भी बात ऊपर नीचे हो गई और मुझे फीलिंग आ गई, इसका मतलब अभी भी अभिमान का अंश है। अगर मैं स्वमान में हूं तो कभी भी मुझे अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। क्योंकि हम अपने अपमान और मान के लिए आत्माओं पर निर्भर नहीं है। किसने मुझे मान दिया है? स्वयं भगवान मुझे सम्मान दे रहा है, उसके आगे ये आत्माओं का मान क्या करेगा? तो उसने मुझे पूछा या नहीं पूछा, उसने मुझे प्यार दिया या नहीं दिया, या उसने मुझे अपमान कर दिया, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है? अगर मैं भरपूर हूं तो नहीं पड़ेगा, और अगर मैं अंदर से खाली हूं तो चाहिए, खाली हूं तो चाहिए ना, भरपूर हूं तो दूंगी, फर्क है या नहीं है? जिस बात में हम फुल होते हैं ना वो हम दे सकते हैं, जिस बात में हम खाली होते हैं उसमें मुझे चाहिए, पहले तो मुझे ही चाहिए। तो चेक करना, अगर मैंने अपने आप को भरपूर नहीं किया है, अगर मैं स्मृति स्वरूप नहीं हूं, वही बात, अगर मैंने घोटा नहीं है तो फिर मैं देहाभिमान में आकर मांगती रहूंगी, है ना। लेकिन भरपूर है तो मुझे लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं देने वाली हूं, मुझे मिले या ना मिले लेकिन मुझे देना। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ब्रह्मा बाबा ने हर एक आत्मा को दिया। बच्चे बाबा के सामने आते थे तो बाबा ने उनको स्नेह का सम्मान दिया। बच्चे तो स्नेह के पात्र होते हैं, लेकिन सम्मान पूर्वक स्नेह दिया, साधारण रीति से नहीं, बच्चों को भी सम्मान दिया और ऊंची दृष्टि से देखा कि यही बच्चे आगे जाकर के विश्व कल्याणकारी बनने वाले हैं। आज जो हमारी दादियां हैं ज्यादातर वो उस समय 9 साल 10 साल 12 साल 14 साल के बच्चे ही है ना, बच्चे थे। बाबा ने इतनी ऊंची नजर से देखा तो वो योग्यता उनमें आ गई कि सचमुच वो बच्चे विश्व कल्याणकारी बन गए, है ना, बाबा के कार्य को के राइट हैंड बन गए, वो बाबा के समान बन गए, ऐसा कहेंगे। फिर बाबा ने माताओं को सदा शिव शक्ति स्वरूप से देखा, वंदे मातरम रूप से देखा, साधारण विधि से नहीं देखा। ये साधारण गृहस्थी वाली माताएं हैं जैसे दुनिया में लोग देखते हैं ना, ये क्या करेंगे ना, ये तो साधारण है, इस नजर से देखा भगवान ने। भगवान ने किस नजर से देखा? भगवान ने देखा यही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। हाँ, ये नरक का द्वार नहीं है लेकिन स्वर्ग का द्वार खोलने वाली। आप समझते हो अपने आप को कि हम स्वर्ग का द्वार खोलने वाले भगवान के साथ? हाँ, या सोचते हो अरे कहाँ घर में रोटी चूल्हा चौकी करना है और क्या करेंगे? तो घर की माता नहीं लेकिन जगत माता है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाली है। तो स्वीकार करना पड़ेगा ना उसको, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो आएंगे हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी, तब उस स्थिति का अनुभव होगा कि सचमुच मैं वो माता हूँ जिस नजर से भगवान ने मुझे देखा। फिर बाबा जब भी कुमार कुमारियों से मिलते थे तो बाबा हमेशा उनको कहते थे ये कुमार कुमारी ये असंभव को संभव करने वाले हैं, ये तो महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं। तो उनको भी इतनी ऊंची नजर से देखा तो उनके अंदर वो शक्ति आ गई जो सचमुच असंभव को संभव कर पाए। ऐसे ही बाबा जब बुजुर्ग लोगों से मिलते थे तो बाबा हमेशा उनको इस नजर से इस सम्मान से मिलते थे कि ये तो मेरे हमजींस हैं, मेरे ही जैसे अनुभवी आत्माएं हैं। और ऐसे ही बांधेलियों से बाबा मिलता था तो बाबा कहता था ये याद के पुरुषार्थ में नंबर वन आत्माएं हैं, जो बांधेली आत्माएं हैं योग में नंबर वन है। तो इस नजर से भगवान ने हमको देखा है तो बाबा कहता है उसी दृष्टि की सृष्टि में रहो तो फिर वो बन जाएंगे जो बाबा ने हमें देखा। और दूसरा अभिमान की बात जब आती है, अभिमान का जो सूक्ष्म रूप प्रकट होता है वो इस रूप में आता है मैं राइट हूँ, मैं जो सोच रही हूँ मैं जो कर रही हूँ वो राइट है, दूसरे को हम राइट नहीं समझते, हमेशा उनके विचारों को काट देते हैं, रिगार्ड नहीं देते, ये भी अभिमान का अंश है। लेकिन हरेक अपने अपनी तरह से सही है, उस आत्मा के पार्ट के अनुसार उसके विचार सही हैं, मेरे पार्ट के अनुसार मेरे विचार सही हैं। तो अगर हमें किसी के विचार पसंद नहीं आते तो हम साक्षी हो जाएं, लेकिन हमें किसी के विचारों का अपमान नहीं करना है, ठीक है। फिर तीसरी बात होती है जहां अभिमान का अंश होता है वहां पर हम अपनी गलती नहीं मानते। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो हम उसको छिपाएंगे या झूठ बोल देंगे या सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे माना दूसरों के ऊपर लगाएंगे, ऐसा हुआ ना इसीलिए ऐसा हो गया, अगर ऐसा नहीं होता तो ये नहीं होता। तो अगर हमारे अंदर ये आदत है, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, गलती हुई है तो बाबा कहता है गलती हो गई माना ठीक है, बाबा के सामने अगर हमने क्षमा मांग ली, बाबा तो क्षमा का सागर है, या हम इंग्लिश में कहते हैं सॉरी बोल दो बात वहीं खत्म हो जाती है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर हम जिद सिद्ध के चक्कर में चले जाते हैं, चलो अभी हमने नाम बचा लिया अपना, अभी बचा लिया, बाबा कहता है सदा काल के लिए बाप के दिल में आपका नाम खत्म, बाबा के पास तो हार गए ना, जीते कि हार गए, आत्माओं के सामने जीत गए, आत्माओं के सामने मैंने सिद्ध कर दिया मैं राइट हूँ मैंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन भगवान के दिल में जीत गए क्या? उसको तो मालूम है ना सच क्या है और झूठ क्या है, उससे तो हम छुपा नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा के पास भी, बाबा कहता है मेरे पास टीवी है आपसे भी पावरफुल टीवी है, उसको पूरा पता है कि क्या हो रहा है। तो सदा काल की कमाई हमने गंवा दी, अल्प काल के नाम के पीछे बाबा कहता है अविनाशी कमाई आपने गंवा दी, ठीक है। तो कभी भी अगर मेरे से गलती हुई है तो चलो उस समय मेरा नाम थोड़ा खराब भी हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन सदा काल के लिए हम बाबा के दिल में विजयी बन गए या सदा काल की हमें वो प्राप्ति हुई। फिर तीसरी बात होती है अभिमान का जो अंश कई बार प्रकट होता है, हम दूसरों की तारीफ नहीं सुन सकते, ईर्ष्या का भाव जिसके अंदर सूक्ष्म अभिमान होगा जल्दी ईर्ष्या में आ जाते हैं, वो दूसरों की तरक्की को नहीं देख सकते क्योंकि मैंपन होता है ना, तो मैं ही रहूं। बाबा कहता है पुरुषार्थ में मैं करूं बहुत अच्छा, बाबा खुश है ना पुरुषार्थ में जो ओटे सो अर्जुन, सबसे पहले मैं। लेकिन और सब बातों में ना, सेवा के चांस में या और भी जो बातें हैं आगे बढ़ने की, बाबा कहता है उसमें कहो पहले आप। तो अगर किसी की प्रशंसा मेरे सामने होती है और मुझे सहन नहीं हो रही तो क्या करते हैं हम, उसकी थोड़ी कमी निकाल के बताते हैं, अरे आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते इनको, हम जानते हैं। फिर हम दो चार बातें अच्छे से सुना देते हैं ताकि उनके मन से उसकी तारीफ बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये क्या हुआ है ना, तो ये भी अगर हम करते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अंश है हमारे अंदर और हम चेकिंग करके उसको चेंज करें। ठीक है, हर आत्मा का गुण है और उनका गुण है, उस गुण से वो अपनी प्रशंसा पाते हैं। तो हमने सुना और अगर वो गुण धारण करने योग्य है तो मैं भी अपने अंदर उस गुण को धारण करूं, उस अच्छाई की खुशबू को लूं जैसे कहते हैं, और ही वो आगे बढ़े, ये मेरी शुभ भावना हो। ये ज्ञानी आत्मा का लक्षण है, बल्कि ऐसे नहीं कि किसी की तारीफ सुनकर के मुझे परेशानी हो रही। फिर बाबा कहते हैं अभिमान का अंश है ना, थोड़ा रौब में आ जाते हैं। रौब में मतलब कई बार सोचते हैं दुनिया में चलना है तो थोड़ा तो रौब रखना पड़ेगा, बिना रौब रखे क्या कहेंगे भाई खास, क्या कहेंगे, रौब रखना जरूरी है हाँ या ना, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो कहते हैं ना वो हाथ उठाएं, अच्छा, और जो कहते हैं हाँ हाँ, मैं तो उठाएंगे नहीं क्योंकि पता है पता है बाबा की श्रीमत तो नहीं है, लेकिन रौब की बजाय क्या रखना है, रुहाब। हाँ, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। हाँ, जैसे शिवानी बहन बोलती है बिलीफ सिस्टम है कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा, तो हम ऐसा मान्यता लेकर चलते हैं रौब नहीं रखेंगे तो लोग मानेंगे ही नहीं, थोड़ा रौब रखेंगे तो मान रहेगा, ऐसा नहीं है। रूहानियत का जो रुहाब होता है वो अपने आप प्रभाव डालता है, आप नहीं बोलते, जिसको हम ऑरा कहते हैं ना, जो भी हमारा, जैसे हम सकारात्मक नकारात्मक की बात करते हैं तो नेचुरली जब हम ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, स्वमान की स्थिति में रहते हैं, तब हमारा ऑरा कैसा होता है, प्रभाव क्षेत्र कैसा होता है, पॉजिटिव रहेगा ना, तो वो पॉजिटिव ऑरा आपका अपने आप प्रभाव डालेगा। जो व्यक्ति स्वराज्य अधिकारी होते हैं, यानी अगर मेरा अपने ऊपर अधिकार है तो दूसरे को आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे लोग अपनी सीट पर होते हैं ना, तो लोग अपने आप ऑर्डर मानते हैं क्योंकि सीट की पावर है। अगर प्रधानमंत्री अपनी सीट पर है तो उसकी सीट की पावर है, वो जो ऑर्डर देगा लोग फटाफट मानेंगे बिना कुछ कहे। अगर हम अपनी सीट पर हैं, यानी अपनी स्मृति की सीट पर हैं, अपने अधिकार की सीट पर हैं, स्वमान की सीट पर हैं, तो माया भी सरेंडर करेगी, व्यक्ति प्रकृति का तो छोड़ो, माया भी दासी हो जाएगी ना। जैसे वो कहा सांप को शेष शैया बना दिया, किसने बनाया, विष्णु ने बनाया ना, तो सांप कैसे शेष शैया हो गए, पांच फन, वो पांच विकारों का प्रतीक है, तो वो किसकी यादगार है। बाबा ने कहा आपके जो यादगार हैं वो देवताओं को दिए हैं, आपके अलंकार जो हैं वो देवताओं को दिए हैं, पुरुषार्थ किसका है, ब्राह्मणों का है। तो यदि हम वो स्मृति स्वरूप में रहते हैं, उस खुशी में, उस नशे में रहते हैं, तो अपने आप कहने की भी जरूरत नहीं है, हम अनुभव कर सकते हैं उसको। योग का प्रयोग, जिसको बाबा कहते हैं प्रयोग करके देखो करता है कि नहीं करते हैं, तो रौब की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, रूहानियत के रुहाब की जरूरत है, और वो अपने आप जो प्रभाव आप चाहते हैं, आपको मांगने की बात ही नहीं है, जैसे कहा ना अपने आप वो आपके सामने आएगा। संकल्प में इतनी सिद्धि होगी, संकल्प में इतनी पावर होगी, जैसे शिलू बहन सुना रहे थे कि आज का समय कैसा है, एक नियम दिया देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप आकर्षित करते हैं। बाबा ने ये तो आज वो लोग नए नए रिसर्चेस करते हैं और उससे सिद्ध करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें बाबा ने हमें पहले दिन से ये बता दिया कि जैसी स्मृति है वैसा ही हम अपने आप अपनी परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। तो स्वस्थिति से परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। अगर मेरी स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति भी बदल जाएगी। हमारा स्वमान कब कम होता है? कब कम होता है? जब हम व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं। ज्यादातर मानो परिस्थिति आई और व्यर्थ संकल्पों में, माना क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, या निश्चय से हम संशय में चले गए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाबा पता नहीं क्या मेरे को मदद करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ड्रामा में मेरा क्या पार्ट है, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है, मानो ये सब व्यर्थ संकल्प है ना। निश्चय बुद्धि विचयंती, ये बाबा ने हमें कहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में भी अगर मेरा स्वमान में पूरा निश्चय है तो मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे कहा, स्वस्थिति से परिस्थिति पर हम विजयी हो जाते हैं। तो परिस्थिति के समय ही मुझे अपने हथियार को यूज करना है कि परिस्थिति के समय मुझे हथियार को छोड़ देना है, क्या कहेंगे? परिस्थिति के समय ही मुझे हथियार को यूज करना है ना। बाबा ने मुझे ये अस्त्र शस्त्र दिए हैं, ये हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। वो अस्त्र शस्त्र तब काम करेंगे जब मैंने उसे अभ्यास में लाया होगा। जैसे वो सैनिक युद्ध के मैदान में जाकर के सीधा चलाएगा तो निशाना लगेगा नहीं, रोज अभ्यास करता है वो, भले स्थूल शस्त्र है, स्थूल बंदूक है, लेकिन ऐसे निशाना नहीं मार सकती है वो। निशाना कब लगेगा? रोज प्रैक्टिस करता है वो सैनिक, तब जाकर के जब समय आता है, जब सचमुच दुश्मन सामने होता है, तब वो जहां हिट करेगा वहां हिट होगा। तो मेरे भी जो स्वमान है वो तब काम करेंगे जब मैंने उसको रोज अभ्यास किया होगा, जब मैंने उसको अपना बनाया है। नहीं तो वही होगा कि परिस्थिति हावी हो जाएगी और मेरी सीट से मुझे उतार देगी। सीट पर हम सेट होने की कोशिश करेंगे, जैसे आज के राज्य में क्या होता है, बेचारे वो सीट पर सेट होने की कोशिश करते हैं लेकिन ओपोजिशन पार्टी वाले खींचते रहते हैं, सेट नहीं होने देते हैं। तो यहाँ ओपोजिशन पार्टी में कौन है? माया है ना। तो माया भी कोशिश तो करेगी ना, क्योंकि आज के समय में उसका राज्य है, वो शक्तिवान है, तो पूरी कोशिश करती है कि हम अपनी सीट से नीचे उतर के आ जाए, वापस देह अभिमान में आ जाए। उतर गए तो वो हम पर हावी, और अगर हम अपनी सीट पर हैं तो हम उस पर हावी, ऐसे ही होगा ना, है ना। तो ये अपने आप को देखना है और पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है कि हम हर दिन स्वमान में स्थित रहें। तो रोज अमृत वेले सेट कर लो। आज एक महीने के 30 स्वमान हम ले सकते हैं, कितने हैं? 108 होंगे मैं समझती हूँ, जो बाबा ने हमें दिए हुए हैं, पूरी 108 की माला होगी। आप सेट कर लो पूरे महीने के कि हर दिन मुझे आज का दिन, जैसे मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान, जैसे आज था फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता हूँ, है ना, ऐसे कल का भी आपको सम्मान मिलेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो सारा दिन अलग अलग तरीके से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव करो। और अगर वैसे नहीं आता है तो लिखो उसको। बड़ी दादी कहती थी, दादी प्रकाश मणि, कि हमको बाबा कहते थे हम 108 बार लिखते थे, वैसे भूल जाते थे, लेकिन 108 बार उस बात को लिखा तो दिन में कई बार मेरे दिमाग में अपने आप चलेगा। तो कोई भी विधि हम अपनाएं, लेकिन मुझे आज इस स्वमान में स्थित रहना ही है, इसका अनुभव करना ही है। तो फिर हर स्वमान की शक्ति का हम अनुभव करेंगे और समय पर हमारा वो स्वमान कार्य करेगा, हमें वो नशा, वो खुशी और सर्व खजानों की प्राप्ति का अनुभव, जैसे बाबा कहता है, क्या अनुभव करेंगे? जो पाना था वो पा लिया, अब क्या बाकी रहा, हा? उसमें सब प्राप्तियां समाई हुई हैं या नहीं है? तो ठीक है, ओम शांति।